वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्यै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री गोवर्धनधारी श्री नाथ जी गोपाल के चरणों में उन्हीं के मुखारविंद से अमृतमयी वाणी भगवद गीता, जिसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में हृदयम, गीता मेरा हृदय है। गीता भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, दिल है। और भगवान अपना दिल किसको देते हैं? जो प्रेमी भक्त हैं उनको अपना दिल देते हैं। इसलिए गीता बोलने से पहले ही भगवान ने अर्जुन को कहा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरे सखा हो, इसलिए आपको ये रहस्य बता रहा हूं। तो भगवत गीता भगवान का हृदय है और प्रेम करने वाले भक्तों के लिए छलक के बाहर निकल आता है ये प्रेम भगवान का। तो भगवान श्री कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है और उनके प्रेम, ये प्रेम की धारा है जो अपने मित्र और सखा और भक्त के लिए और उसके माध्यम से हम सब जो भगवान के बालक हैं उनके लिए ये अमृत का प्रभाव गीता के रूप में हुआ है। गीता अमृत है। 18 अध्यायों का अष्टादश अध्यायनी अंब, अंब का मतलब होता है माता। हमको एक बार मॉरिशस में टेलीविजन के इंटरव्यू में पूछा कि 5000 साल पुराने गीता की अब आज आधुनिक युग में क्या आवश्यकता है। तो हमने उनसे पूछा कि आज मां की आवश्यकता है क्या? नहीं, बच्चे के जन्म के लिए, बच्चे के बोलने के लिए। बच्चा बोलता है तो माँ की भाषा बोलता है, जन्म देगा तो माँ देगी, चलाएगी तो माँ चलाएगी। माँ की जरूरत है कि नहीं? बोले ये कैसा प्रश्न? आप बगैर माँ के कोई पैदा कैसे होगा? बगैर माँ के कोई बोलना नहीं सीखेगा, बगैर माँ के कोई चलना नहीं सीखेगा। तो मैंने कहा जितनी माँ की जरूरत बच्चे के जन्म से लेके बोलने और चलने तक है, इतनी मानव मात्र के लिए गीता माता की जरूरत है, बोलने चलने के से लेकर और जीवन में निर्वाह के लिए। तो वेद व्यास जी ने तो इसको कहा है कि अष्टादश अध्यायनी अंब, ये 18 अध्यायों की गीता माता है। और गांधी जी कहते हैं गीता ये मेरी माता है, जब मैं समस्याओं में घिर जाता हूं, जैसे बच्चा माँ की गोद में सर रखता है, ऐसे गोद भगवान ये गीता की गोद में सर रखता हूं। इस माँ ने आज तक मुझे कभी निराश नहीं किया है, सदा मुझे नई रोशनी की किरण दिखाई, ये प्रकाश दिखाया है, मार्गदर्शन किया है। तो अनादिकाल से ये गीता मानव मात्र का मार्गदर्शन करती आ रही है। तो 18 अध्यायों का ये गीता 3-6 अध्यायों के विभाग हैं इसमें। जैसे ये तो सब हमारे हीरा भाई सोने का काम करते हैं, ज्वेलर हैं, तो ज्वेलरी में जो सामान देते हैं अच्छे बॉक्स में पैक करके देते हैं, तो ये बॉक्स जो होता है जैसे ज्वेलरी बॉक्स। पहली बार हम आए थे तो विठल भाई ने यहाँ हमको सत्संग करने के लिए जो है उस वक्त हम इनके पास गए थे, यहाँ उन्होंने ये सारा व्यवस्था की है। हमारे मुखिया जी तो हर समय बड़े प्रेम और स्नेह से हमारे को सेवा का अवसर देते हैं। सो ऐसे गीता एक ज्वेलरी बॉक्स है। तो ज्वेलरी बॉक्स बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसके अंदर जो बहुमूल्य वो रत्न होता है वो बीच में होता है। तो पहले 6 अध्याय और आखिरी के 6 अध्याय गीता के ये बॉक्स और बॉक्स का ढकना है, और बीच के जो 6 अध्याय 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये असल में है भगवान के हृदय। ये शुद्ध भक्ति का जो बीच में भगवान ने रत्न रखा है ये है 6 अध्याय। उन 6 में भी जो 9वां अध्याय है उसका नाम रखा है राज विद्या राज गुह्य योग। राज विद्या मतलब विद्याओं का राजा, एक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ है ये विद्या जो राज ऋषियों के लिए हुआ करती थी, ये विद्या एवं राज ऋषि, ये राज ऋषियों की विद्या है। ये किसी ब्राह्मण को भगवान ने विद्या नहीं दी, किसी सन्यासी को नहीं दी, राज ऋषियों को दी। क्यों राज ऋषियों को दी है? क्योंकि राज ऋषि श्रेष्ठ पुरुष राजा होता है जिसमें भगवान विष्णु का अंश होता है। वो जैसा आप प्रमाण स्थापित करेगा सामान्य संसार उसका अनुकरण करेगा। तो भगवान को ये यद्यद आचरते पुरुष के आधार के ऊपर राज ऋषियों को ये विद्या दी है। तो राज विद्या और राज गुह्यम। गुह्यम किसको कहते हैं? गुह्यम का मतलब बहुत रहस्य, गुप्त। तो और इस 9वें अध्याय का नाम है गुह्य गुह्यतर गुह्यतम। ये गुह्यतम ज्ञान है, 9वें अध्याय का ज्ञान है, उसका नाम है गुह्यतम ज्ञान। तो गुह्य ज्ञान क्या है? बोला 2रे-3रे अध्याय में गुह्य ज्ञान है। आत्मा शरीर अलग है, प्रकृति का, आत्मा का और भगवान का, तीनों का वहां परिचय कराया गया है, वहां आत्मज्ञान है। तो आत्मा और शरीर अलग है, ये ज्ञान है 2रे अध्याय में। तो इसको कहते हैं गुह्य ज्ञान। गुह्यतर ज्ञान है 7वें और 8वें अध्याय में, जिसमें जीव का भगवान से संबंध क्या है। संबंध जो भगवान का है वो जीव का है, ये गुह्यतर ज्ञान है। 9वें अध्याय और 10वें अध्याय में गुह्यतम ज्ञान है। वो गुह्यतम ज्ञान क्या है? 10वें अध्याय में 4 श्लोक चतुर्श्लोक की गीता है, और 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक गुह्यतम ज्ञान है। 9वें अध्याय का जो आखिरी श्लोक है, ये श्लोक 18वें अध्याय के आखिर में फिर दोबारा आता है, पूरे का पूरा श्लोक सिर्फ एक शब्द के अंतर से, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्करो। ये 4 सूत्री भगवान का जो प्रोग्राम है ये गुह्यतम ज्ञान है, जिसमें भगवान अपना हृदय खोल के बताते हैं कि मुझे पाने का रास्ता क्या है। जैसे लक्ष्मण जी ने जब राम जी से पूछा कि आपको पाने का सरल रास्ता क्या है, तो क्या बोला? मम गुण गावत पुलक शरीर नयन बहे नीरा। हाँ, जो मेरा गुण गाते हुए जिसके आंखों से आंसू बहे, हृदय पिघल जाए, ऐसे भक्त के मैं बस में रहता हूं। तो ये जो ये भगवान को पाने का ये भगवान ने अपना साधन बताया। तो आज हमारे सत्संग का विषय है 9वां और 10वां अध्याय, 9वें अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक। पहले 2 श्लोकों में गीता को समझने का अधिकारी कौन है, उसलिए पहला शब्द भगवान ने बोला अनुसूयवे, जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करता, जो मुझ में दोष नहीं देखता, पहला शब्द है अनुसूयवे। दूसरा है तत्श्रणो, सुनना। दूसरा सुने, भगवान से सुने या भगवान के भक्तों से सुने, दो। और तीसरा श्रद्धाना और श्रद्धा हो। तो 3 चीजें 9वें अध्याय में भगवान को, भगवान के गुह्यतम ज्ञान को जानने के लिए जरूरी है। पहली क्या? अनुसूयवे, भगवान से ईर्ष्या नहीं करे, दोष नहीं देखे भगवान में, भगवान की वाणी में, भगवान के वचनों में दोष नहीं देखे। दूसरा श्रणो, भगवान से बड़ी श्रद्धा से सुने। और तीसरा श्रद्धा हो और सुने। उसके उपरांत भगवान ने इस ज्ञान की दुर्लभता के लिए ये श्लोक बोल दिया, मजुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये यतताम सिद्धानाम कश्चन माम वेति तत्वता। हजारों में कोई एक होता है जो सिद्धि के रास्ते पे चलता है, अपने आप को जानने का प्रयास करता है। ऐसे हजारों जो अपने आप को जान लेते हैं, कोई एक मुश्किल से मुझे जानता है। इसका मतलब कितना दुर्लभ है ये ज्ञान। हाँ, इसको कहते हैं कोटि मध्य नारायण प्रायण, करोड़ों में कोई एक है जो नारायण का शरणागत होता है, ये बहुत दुर्लभ है। चैतन्य महाप्रभु जब रूप गोस्वामी को भक्ति के रस अमृत का प्रयागराज के 10 अश्वमेध घाट पे शिक्षा दे रहे थे, तो कह रहे थे अनंत कोटि जीव अनंत कोटि ब्रह्मांडों में है, उसमें से आधे तो बेचारे अचल हैं, वो तो चल नहीं सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे उनको छोड़ दो, बाकी जो चल जीव हैं, उन चल जीव में कुछ तो हैं जल के अंदर जलचर हैं, कुछ नभचर आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, और कुछ धरती के ऊपर चलने वाले हैं, कुछ थलतर कुछ जलचर और कुछ नभचर, कुछ आकाश में कुछ धरती पे कुछ पानी में। और फिर कहा कि जो धरती पे चलते हैं उसमें भी ज्यादा पशु हैं, कम से अल्प मानव है, अल्प संख्या में मानव है, और फिर मानव में आधे तो भगवान को मानते ही नहीं है, नास्तिक है, और जो आधे मानते हैं उसमें प्रायः कोटि कोटि करोड़ों में कहते हैं हमें तो अपना कर्म करना है, कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। ऐसे करोड़ कर्मी हो ना, उनमें कोई एक ज्ञानी श्रेष्ठ होता है, जो कहता है कर्म करेंगे तो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा ना, तो फल भोगने के लिए तो जन्म लेना ही पड़ेगा ना भाई। अच्छा फल अगर मैं बहुत बड़ा गरीबों का भोजन खिलाता हूं तो अगले बार मेरे को राजा महाराजा का जैसे जन्म मिलेगा, मेरे को भूख नहीं कोई कहीं मांगना नहीं पड़ेगा, लेकिन जन्म तो लेना ही पड़ेगा ना। वो गरीबों का इलाज करा रहा हूं तो अगली बार मेरे को कभी बीमार होना नहीं पड़ेगा, अस्पताल का डायरेक्टर बन के बैठ जाऊंगा, लेकिन आना तो पड़ेगा, क्योंकि जो काम करेंगे फल कर्म करेंगे तो फल भोगना पड़ेगा। ज्ञानी इसलिए अपनी आत्मा को वो अलग समझता है, निर्लेप करता है, इसलिए करोड़ कर्मियों में एक ज्ञानी श्रेष्ठ। और फिर आगे कहते हैं महाप्रभु जी, कोटि ज्ञानी मध्य कोई एक मुक्त, ज्ञानी बहुत से हो सकते हैं लेकिन उनमें से मुक्त कोई एक मुश्किल से होता है। ज्ञान के रास्ते पे चले लेकिन मुक्ति के रास्ते के तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। और जो मुक्त होता है उसको कहते हैं ब्रह्मभूत, जो बंधन में होता है उसको कहते हैं जीवभूत। गीता में दोनों शब्द हैं, एक जीवभूत है 15वें अध्याय में और 18वें अध्याय में ब्रह्मभूत है। तो जीवभूत वो है जो प्रकृति के तीन गुणों के बंधन में बंधा हुआ है और अपने कर्मों के कारण आता जाता है, वो है जीवभूत। और जो ब्रह्मभूत है वो मुक्त हो गया, वो उसको मुक्त कहते हैं। और 18वें श्लोक के इस श्लोक के आधार के ऊपर फिर आगे महाप्रभु कहते हैं, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। ऐसे कोटि जो मुक्त हैं उनमें से कोई एक दुर्लभ भगवान का, इसको कृष्ण गोविंद गोपाल दामोदर का कोई एक भक्त बहुत मुश्किल होता है। तो कितना दुर्लभ है ये गीता भक्त के लिए, तो भगवान कहते कितना दुर्लभ है ये गीता। और इसके बाद भगवान ने अपना प्रकृति के साथ संबंध बताया है 9वें अध्याय में, कि प्रकृति के साथ मेरा संबंध क्या है। तीन तत्व हैं वेदांत में, तीन तत्व हैं जीव जगत और जगदीश। जीव हम सब, जगत ये प्रकृति, और जगदीश भगवान जगत का ईश्वर, ये तीन तत्व हैं, ये वेदांत का सार है। तो भगवान का इस जगत के साथ क्या संबंध है, तो ये जो श्लोक आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9वां और 10वां, इसमें भगवान श्री कृष्ण अपना इस भौतिक सृष्टि के साथ, इस क्रिएशन के साथ क्या संबंध है वो बता रहे हैं। तो इतना सिर्फ पहले सुन लीजिए कि भौतिक जगत 1/4 है, 1/4 भौतिक जगत है, 3/4 स्पिरिचुअल वर्ल्ड आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ 3/4 है। जैसे कोई पूछे कि जेल में ज्यादा लोग हैं कि बाहर ज्यादा घूम रहे हैं, तो ये है कि जेल में कम है बाहर ज्यादा है। तो ऐसे मुक्त ज्यादा हैं और बद्ध कम हैं, हम ज्यादा दिखते हैं लेकिन इससे ज्यादा भगवत धाम में तो अनंत है। तो इसलिए ये सृष्टि जब भगवान करते हैं ना, तो ये सृष्टि करने के पीछे भगवान की बहुत बड़ी करुणा है, भगवान की दया है। भगवान ये सृष्टि क्यों करते हैं? प्रलय काल में सोए हुए जीव को भगवान ऐसे जगाते हैं जैसे मां अपने बच्चे को सुबह उठाती। ये भगवान को इसलिए माता पहले कहते हैं, तुम्हें वो माता पहले कहते हैं। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं तुम्हें माता हम अस्य जगतो, पिता हम अस्य जगतो, माता धाता पिता, माता भी मैं हूं। तो माता के भाव में भगवान सृष्टि करते हैं। क्यों करते हैं? जीवों को प्रलय काल में सोए हुए जीवों को जगा के एक और मौका देते हैं, अवसर देते हैं कि वो अपने घर लौट आए। तो इससे पहले दो श्लोक जो सातवां आठवां है उसमें भगवान ने कि आठवें अध्याय में भी ऐसे श्लोक है, नौवें अध्याय में ऐसे श्लोक है। दोनों में अंतर सिर्फ ये है कि आठवें अध्याय में जो सृष्टि के श्लोक है वो विसर्ग है, जो ब्रह्मा जी की सृष्टि है। ब्रह्मा जी की रात होती है तो सब जीव सो जाते हैं, ब्रह्मा जी का दिन होता तो जग जाते हैं, उसको बोलते हैं विसर्ग। वो विसर्ग है, ब्रह्मा जी की सृष्टि है, उसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। नैम से प्रलय होती है, एक होती है नित्य प्रलय, जैसे हम रोज रात को सो जाते हैं तो हमारे को ना अपना घर याद होता है, ना बच्चे याद होते हैं, ना सामान, कुछ भी नहीं, 8 घंटे हमको दुनिया से हम चले गए। ये इसको बोलते हैं नित्य प्रलय। इसलिए हमारे पुराने लोग कहते हैं रात को जब सो जाते हैं तो मरे के बराबर है, कुछ भी याद नहीं रहता है। तो इसलिए उठ के सुबह स्नान करना है, कपड़े बदलने हैं कि हम दोबारा जिंदा उठ गए, भगवान ने बड़ी कृपा की, इसको बोलते हैं नित्य प्रलय। फिर नैमित्तिक प्रलय है जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो ये भूर्भुवस्व, ये तीनों लोग सो जाते हैं और ये सारे ब्रह्मा जी के साथ गर्भोदक्षाई भगवान के उधर में चले जाते हैं। और जब ब्रह्मा जागते हैं, दिन होता है, जैसे हम दिन में अब रात को सो जाए, दिन में आप उठते हैं, जहां काम छोड़ा है वहां से काम शुरू करते हैं। तो जैसे ब्रह्मा जी दोबारा सृष्टि करते हैं तो जहां जो था वहां से उसका काम चालू होता है, जहां जैसे था। इसका उदाहरण ऐसे देते हैं कि बरसात की मौसम, बरसात पड़ने शुरू हो जाए तो 2 दिन के बाद चारों ओर हरियाली हो जाती है, किसी ने घास नहीं डाला, अपने कैसे हो गए? वो बीज पहले ही वहां पड़ा था, बरसात पड़ते ही सब अपने आप उग जाता है। ऐसे सारे का सारा, ऐसे सृष्टि अपने आप उग जाती है। नवे अध्याय में जो ये श्लोक है, ये ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होके उसको कहते हैं महाप्रलय। महाप्रलय तो एक नित्य प्रलय, एक नैमित्तिक प्रलय, एक महाप्रलय। जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी के साथ ये पूरे का पारा ब्रह्मांड 14 ही लोक समाप्त हो जाते हैं, तो उसको महाप्रलय कहते हैं। उसके बाद जो सृष्टि होती है वो नई सृष्टि पहले भगवान विष्णु करते हैं, उसको सर्ग बोलते हैं, जीवों को उत्पन्न करते हैं उनके कर्मों के साथ, फिर सारा सामग्री देते हैं, फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और फिर ब्रह्मा जी को कहते हैं अब सृष्टि करो। तो ये सृष्टि का कार्य दोबारा होता है। और चौथी प्रलय को कहते हैं आत्यंतिक प्रलय। इसका मतलब हम जन्म मृत्यु से चक्कर से छूट के और वापस भगवत धाम चले जाएं। और जिसकी जो इच्छा, ज्ञानी होता है, ब्रह्मलीन होता होना चाहता है, योगी होता है तो परमात्मा का ध्यान करके परमात्मा के पास पहुंचना चाहता है, और भक्त भगवान के गोलोक धाम में भगवान के सेवा में लगना चाहता है, वो जिसका जैसा भाव है, जैसे भगवत गीता का श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि अहम्, जैसे कोई मेरे से जैसी प्रार्थना करता है वैसे उसकी पूरी करता हूं। तो अब जो आज का श्लोक है इसमें भगवान अपना भौतिक जगत से संबंध बता रहे हैं, आप भी पाठ हमारे साथ कीजिए। न च माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजया उदासीन वदासीनम् असक्तं ते शुकरमसो। न च माम तानि कर्माणि, भगवान श्री कृष्ण जब माम कहते हैं तो अर्जुन को अपनी छाती पे हाथ ऐसे लगाते हैं, माम मतलब मैं, कृष्ण कह रहे हैं मैं अर्जुन, न न च माम तानि कर्माणि, ये जो सृष्टि का कर्म है ना, ये जब सृष्टि होती है ब्रह्मा जी करती है ना, इस कर्म में निबधन्ति, न माम निबधन्ति धनंजय, मैं इसके बंधन में नहीं हूं। निबंधन्ति मतलब बंधन में मैं नहीं हूं सृष्टि के। हे धनंजय, ये जो सृष्टि का कार्य है ये मुझे बंधन में नहीं डालते। इसलिए एक सिद्धांत पहले समझ लीजिए, शरीर का जन्म होता है और शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा का आना जाना होता है अपने कर्मों के कारण, स्वतंत्र नहीं। देव नेत्रेण, देव नेत्रेण मतलब भगवान के निर्धारित देवों की नजरदारी में हरेक को अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। तो जन्म होता है शरीर का, मृत्यु होती है शरीर की, आत्मा का आना जाना होता है कर्म के कारण, लेकिन भगवान का अर्थ अवतार होता है अपनी इच्छा से। ये तीन है सिद्धांत। तो यहां जो भगवान कहते हैं कि जब सृष्टि होती है तो जीव आते हैं अपने कर्मों से, मैंने, मेरा बंधन नहीं है, मैं इस बंधन में नहीं पड़ता हूं। तो भगवान आप कैसे फिर रहते हैं? उदासीन वद आसीनम। उद आसीन शब्द का अर्थ है, उद का मतलब ऊपर, आसीन ऊपर बैठा हूं, उदासीन। और उदासीन का दूसरा अर्थ है न्यूट्रल, मैं पक्षपात नहीं हूं, पक्षपात से अलग, क्योंकि मैं तो ना किसी के कर्म का फल का भोगता हूं, मैं तो न कर्म करता हूं न कर्म फल भोगता हूं, तो मैं तो उदासीन बैठा हूं, ऊपर बैठा हूं। जैसे नीचे दो नीचे दो मानो के दो बैल आपस में नीचे लड़ रहे हैं तो एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन ऊपर जो बैठा है अपनी छत पे उसको तो कुछ नहीं हो रहा। तो मैं तो ऊपर उदासीन बैठा हूं। उदासीन का उधार कैसा है, उदाहरण क्या है? जैसे जज है, जज जब कोर्ट में बैठता है तो उसका जो निर्णय है सब मानते हैं, लेकिन किसी को कहता है कि ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई, किसी को कहता है इसको 10 साल टीप दे, जेल में डाल दो, इसको मृत्यु दे दो, लेकिन उसमें से जज का किसी से ना दुश्मनी है ना दोस्ती है। जिसको दौलत दिया उससे भी कुछ लेना देना नहीं है, और जिसको मृत्यु दंड दिया उससे भी जज का कोई दुश्मनी नहीं है। उदासीन हो तो अपना उदासीन बैठा हुआ है, जो कानून है वो कानून उनको आगे पीछे करता है। तो भगवान ऐसे बैठे हैं उदासीन, जैसे जज बैठा हुआ है, काम सारा वही करते हैं लेकिन किसी से पक्षपात नहीं है। उदासीन का एक अर्थ है पक्षपात। एक पूरी संप्रदाय है गुरु नानक बाबा के बेटे श्री चंद की, उसका नाम ही है उदासीन संप्रदाय। वो सब साधु सन्यासी उदासीन अपने आप को कहलाते हैं। उदासीन का मतलब है जो कर्मों के बंधन में नहीं फंसता, जिसको कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके ऊपर प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो है उदासीन। उदासीन वद आसीनम। और फिर कहते हैं आखिरी लाइन में असक्तम, मेरी कोई आसक्ति नहीं है। उदासीन और आसक्त ये दो शब्द हैं। अब आपसे मैं ऐसे पूछूं, आप अब यहां तक आए मंदिर तक तो रास्ते में आपने कितनी गाड़ियां देखी होंगी, कितने आदमी देखे कि नहीं देखे? आंखें तो खोले करके आए ना, लेकिन कोई एक भी आपको चपका है, आपकी आंख में अटका है? नहीं, अब देखते हुए आए, लेकिन किसी से, अरे अगर आपने अचानक अपना जाना पहचाना कोई आदमी देखा होता, अपनी गाड़ी कहीं खड़ी हुई देखी होती तो एकदम उसमें आसक्ति हो जाती, मेरी है वो आसक्त। वैसे आप पूरा शहर घूम के आए, किसी में आसक्त नहीं हुए, लेकिन अपनी चीज कोई देखी तो मेरी थी, तो उसमें एकदम आप आसक्त हो जाते। तो आसक्ति का इसलिए एक सिद्धांत यह है, शास्त्रों में कभी ये घर गृहस्थी बंधन है लिखा होता है, उसका अर्थ ये नहीं है कि घर गृहस्थी बंधन है, घर गृहस्थी में आसक्ति बंधन है, घर गृहस्थी बंधन नहीं है, उसमें आसक्ति बंधन है। बंधन क्या है? आसक्ति का अर्थ ऐसा है जैसे 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 मधु पड़ी है, उसके अंदर जाके चपक जाओगे तो खा नहीं पाओगे, मर जाओगे। तो चपकना है वो खराब है। आसक्ति, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि आसक्ति करनी नहीं है, किससे आसक्ति करनी है? इसको एक भगवत गीता में श्लोक है, राग द्वेष व्यवस्थितो। राग मतलब आसक्ति और द्वेष का मतलब है रेनंसियो, उस किसी चीज को छोड़ देना। व्यवस्थितो, व्यवस्थित करो का मतलब क्या है? छोड़ना नहीं है। जैसे किचन का सामान किचन में रखो, बाथरूम का सामान बाथरूम में रखो, इसको बोलते हैं व्यवस्थित। तो राग किससे करना चाहिए, आसक्ति किससे करनी चाहिए? सातवें अध्याय का पहला श्लोक है, मैं आसक्त मना पारत। अरे आसक्ति मुझसे करो, भगवान कहता है। तो मैं चपकना किसी से, तो मेरे से चपक जाओ ना, मेरे से चपकने से तुम्हारे को संसार में कभी फंसना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आसक्ति खराब है, आसक्ति संसार की खराब है, तो यहां बात हो रही है संसार की। भगवान कहते इसमें मेरी आसक्ति नहीं, ये तो अपने कर्मों से सारे आते हैं, मैं तो कृपा करके इनके साथ आता हूं, इनके साथ तो मैं रहता ही हूं। तो आसक्त तेषु कर्मसु, उनके कर्मों में मुझे कोई आसक्ति नहीं है। इसका मतलब यह है कि भगवान किसी के कर्मों की जिम्मेवारी नहीं उठाते। हाँ, ये पांचवें अध्याय का श्लोक है ना। हाँ न, क्या श्लोक है? न कश्चित पापम न चैव सुकृतिम विभू अज्ञानिन आवृतम ज्ञानतेन मोयन्ति जन्तव, न तते कश्चित पापम, मैं किसी के पाप का जिम्मेवार नहीं हूं, न च पुण्यम, और किसी के पुण्य का जिम्मेवार नहीं हूं। हर एक अपने पाप पुण्य साथ लाता है, करते कैसे पाप? अज्ञानेम आवृतम ज्ञानम, उसका ज्ञान जो असली है वो अज्ञान ने ढक दिया है। तो जो अज्ञानी है वो आसक्त संसार में होता है, और जो ज्ञानी है वो भगवान में आसक्त होता है, अपनी आत्मा में आसक्त होता है। भाई आसक्ति खराब नहीं है, लेकिन संसार की आसक्ति इसलिए खराब है कि संसार रहेगा नहीं, तो कल आज वो चला गया तो दुख हो जाएगा ना। ऐसी चीज में आसक्ति करें ही क्यों जो सदा रहने वाली नहीं है? ऐसी चीज में क्यों नहीं आसक्ति करें जो सदा रहने वाली है? ये आसक्ति शब्द ही असल में उर्दू में इश्क शब्द हो गया है, ये संस्कृत का शब्द है। तो किससे प्रेम करना चाहिए? बोले भगवान से। संसार से करोगे तो परेशान हो जाओगे। इसलिए एक जगह लिखा है कि असल में प्रेम करना सबके हृदय में भगवान ने भर के भेजा है। कोई हृदय प्रेम से खाली नहीं है, लेकिन कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं जिसमें प्रेम करना सिखाया जाए, किससे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसलिए सब लोग प्रेम में धोखा खा जाते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं। इधर प्रेम किया, उधर प्रेम किया, और प्रेम में परेशान हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण, ये जो हम यहां 7 वर्ष में भगवान ने गोलोक गोवर्धन का धारण किया, ये 10 साल 7 महीने श्री कृष्ण की लीला केवल ब्रज में होती, 10 साल 7 महीने। और नंद नंदन भगवान यशोदा नंदन कृष्ण, उसके अवतार का उद्देश्य और कोई नहीं है। वो जब इस धरती के ऊपर आते हैं, वो ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, और जितने ब्रह्मा जी के दिन है तब तक इतनी बार आ चुके हैं, एक बार नहीं आए। ब्रह्मा जी के एक दिन में 71 चतुर्युगियां होती हैं, 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में श्री कृष्ण स्वयं भगवान यशोदा के घर में प्रकट होते हैं। ये लीला नित्य है। और जब श्री कृष्ण आते हैं तो उससे पहले एक तो अपने से बड़े गोपों को भेजते हैं, गोपियों को भेजते हैं, और 3.5 साल तक गोकुल में उनके साथ वात्सल्य प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। जैसे बाल बाल लीलाओं में भगवान को प्रेम करना है बच्चे की तरह, जैसे गोपाल जी को, गोपाल जी घर में माताएं प्रेम करती हैं, तो कैसे माता पिता को बच्चों से प्रेम करना चाहिए? भगवान कहते मैं ही आपका बच्चा हूं, मुझसे प्रेम कर लो। संसार में प्रेम किया बच्चे से, बच्चे ने शादी किया, घर से बाबा को ही निकाल दिया और प्रेम गले पड़ गया। तो ये प्रेम करना है तो मुझसे करा, मैं कहीं जाने वाला नहीं, निकलने वाला नहीं, निकालने वाला नहीं, सदा तेरे साथ रहूंगा। और फिर 3.5 साल के लिए अपने सखा साथ में लाते हैं, गौचारण लीला करते हैं। और गौचारण लीला करते हैं, निमंत्रण देते हैं, अरे भाई मित्र बनाते हो संसार में, कॉलेज के मित्र अलग, स्कूल के मित्र अलग, बिजनेस के मित्र अलग, और सारे मित्र आगे इधर नहीं तो उधर, कोई ना कोई आगे पीछे झगड़े का कारण बनता ही रहता है। मित्र मुझे बनाओ, देखो कैसा अर्जुन ने मित्र बनाया, तो मैं तो उसके घोड़े हांकने को तैयार हो गया, रथ चलाने को तैयार हो गया। भगवान होते हुए भी मैं अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तो ये भगवान मित्रता का निमंत्रण देते हैं। ये संबंध है ना संसार के, जो संबंध संसार में बंधन का कारण है वही संबंध भगवान कहते हैं मुझसे कर रहो तो तुम्हारे ही मुक्ति हो गई, तुम बंधनों से मुक्त हो गए। तो भगवान फिर अपने साथ में अपने ही अंग से, राधा रानी कोई स्त्री नहीं है, राधा रानी भगवान के वाम भाग से प्रकट भगवान की शक्ति है, अंतरंग शक्ति है भगवान की, भगवान के ही आनंद देने के लिए उसका प्रकट है। और जितनी गोपियां हैं वो सारी राधा रानी का विस्तार है। राधा रानी अपने से अनेक गोपियां भगवान के आनंद के लिए प्रकट करती है। सारी जो रानियां भगवान श्री कृष्ण की द्वारका की हैं वो राधा रानी का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। तो ये कोई ऐसा नहीं स्त्रियां हैं, ऐसा नहीं है, ये भगवान की शक्ति है। अब इन सब को भगवान साथ लाते हैं, माधुर्य प्रेम का प्रदर्शन करते हैं कि आपको आसक्त होना है, प्रेम करना है तो भी मुझसे कर लो। तो ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार का मुख्य उद्देश्य जो है वो है वो संबंध जो संसार में बंधन का कारण है, वो सब संबंध भगवान के साथ जोड़ लिए जाएं। और हम सब का संबंध भगवान के साथ नित्य शाश्वत संबंध है, हमको भूल गया है, इसलिए दुनिया में संबंध बनाते हैं एक जगह। कई बार जब ये भागवत का प्रसंग जब आता है चित्रकेतु महाराज का, चित्रमेत केतु महाराज को पुत्र नहीं, अंगिरा ऋषि ने आके उसकी कृपा की, बेटा तो हुआ, का शोक हर्ष इसका नाम होगा, को आपको खुश सुख भी देगा लेकिन फिर दुख भी देगा। बेटा हुआ, बड़ा खुश हुआ, और जब बेटा वो रानी जिसने जन्म दिया बेटे को, तो बाकी रानियां उससे ईर्ष्या करने लगी, बच्चे को विष दे दिया, बच्चा मर गया, और राजा रानी क्या, वो फिर रोने लगे, शोक होने लगा। तो इस बार अंगिरा अकेला नहीं आया, नारद को साथ ले आया, और दोनों ने आके, महाराज आप रो रहे हो क्या, ये बच्चा उठ जाएगा क्या, जो मर गया वो मर गया, उठेगा थोड़ी, पर आप हो कौन, मैं ही अंगीरा हूं, आपको बच्चा दिया था, ये नारद जी साथ आए, नारद जी ने उस बच्चे की आत्मा को मंगाया, बच्चा बट उठ के बैठ गया। महाराज इतना खुश हो गया, महाराज चित्र कहते, अरे बेटा तू कहां छोड़ के गया, मैं बड़ा दुखी हूं। बेटा कहता, रुको बाबा, कितनी बार मैं तेरा बाप हुआ हूं, कितने जन्मों में तुम्हारा मेरा संबंध हुआ है, बस मेरा इतने ही दिन तुम्हारे साथ रहना था, अब मेरे को जाना है यहां से। नारद ने उसको ये प्रमाण करके दिखाया कि ये सारे संबंध हमारे कैसे हैं। इस प्रसंग को जब हम पढ़ते हैं तब हमको ये उदाहरण याद आता है, ये नोट पड़ा है आपकी जेब में, यहां का बहरीन का, जब तक आपकी जेब में है एक दीनार हो या पांच हो या दस हो, आप समझते हो मेरा है, लेकिन बाजार में जाके केला डजन ले लो, जिसको देगा वो कहेगा मेरा है, और केले वाला जाके दूसरे को देगा वो कहेगा मेरा। कितने जेब इस नोट ने बदले आज तक, और सबने इसको अपना माना कि नहीं माना, लेकिन नोट के ऊपर क्या लिखा है कभी देखा है, किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ बहरीन का है, प्रॉपर्टी किसकी है, क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर, देखो पढ़ के देखना। ऐसे ही जो भी हमारे संबंध है, ये मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, लेकिन उसके सर के ऊपर लिखा है ममा ई वांसो, ये रिजर्व बैंक कृष्ण की प्रॉपर्टी है, ये हमारी नहीं है, असल में हमारी नहीं है, उनके ऊपर हम देखते नहीं, कभी देखा नहीं हमने, कहा झपा क्या लगा हुआ है, नोट को कैसे हम अपना मानते हैं, और जब तक जेब में है तब तक ये मेरा ही है, लेकिन दूसरे को दिया उसने उतना ही मेरा माना, लेकिन कुछ ही नहीं देखा कि है किसका वो। असल में सब जीवों के ऊपर तो ये ठप्पा लगा हुआ है, ममैवान से जीव लोको जीव भूत सनातन, ये तो मेरा है सब। तो ये जो सिद्धांत है कि भगवान हमको संबंध आसक्ति संसार में नहीं करनी, संसार की आसक्ति बंधन का कारण है, लेकिन भगवान की आसक्ति प्रेम को जागृत करने का साधन है। कभी कभी कहते हैं भाई क्रोध छोड़ दो, भाई क्रोध छोड़ दो अपने लिए, लेकिन हनुमान की तरह लंका जलानी पड़ेगी तो क्रोध काम आता है, बगैर क्रोध के ये महाभारत युद्ध कैसे होगा बगैर क्रोध के। तो हर एक चीज भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है। तो ये इस श्लोक में भगवान ने क्या कह दिया कि ये सृष्टि मैं करता हूं लेकिन इसमें मैं आसक्त नहीं हूं, इसके किसी के कर्मों से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं न्यूट्रल बैठा हूं, उदासीन की तरह बैठा हूं। तो क्या ये प्रकृति स्वतंत्र है, जैसे चाहे वैसे कर सकती है? अरे प्रकृति तो जड़ है, कैसे करेगी, प्रकृति तो जड़ है ना। तो इसके बाद वाला श्लोक हम पढ़ेंगे जो दसवां, अब इसका पाठ कीजिए। मायाध्यक्षेण प्रकृते सोयते सचराचरम हेतुनाने न कौन्तेय जगत विपरीवर्तते। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मया अधीक्षण का मतलब मेरी अध्यक्षता में। वैसे अध्यक्ष कहते हैं ना, हम प्रेसिडेंट को अध्यक्ष कहते हैं, अध्यक्ष का अर्थ है अधि अक्ष, अधि का मतलब नीचे, अक्ष का मतलब आंख, मेरी आंख के नीचे, मेरी नजरदारी में। माने प्रेसिडेंट किसको कहते हैं, जो बैठा अपनी कुर्सी पे रहता है लेकिन उसकी नजरदारी में सारा काम रहता होता है। तो ये मेरी नजरदारी में सब हो रहा है, ऐसा नहीं है स्वतंत्र प्रकृति नहीं है, मेरे नजरदारी में हो रहा है। असल में सृष्टि होती ही भगवान की नजर पड़ने से है। भगवान की दृष्टि महत तत्व के, अब ये सृष्टि का क्रम थोड़ा सा फिजिक्स जैसा है। असल में भगवान गोलोक में उनका अपना जो 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 स्वरूप है उसमें से इतना तेज निकलता है, उस तेज का नाम है ब्रह्म ज्योति। उस ब्रह्म ज्योति प्रकाश में जैसे सुबह सूरज निकलता है, आकाश होता है ना, आकाश में सूरज चमक रहा है ना, अचानक कहीं एक बादल आ जाता है, जहां बादल आ जाता है वहां सूर्य की रोशनी नहीं दिखती है, वहां थोड़ी छाया हो जाती है। ऐसे ब्रह्म ज्योति में जब सृष्टि होती है तो एक जगह महत तत्व आता है। महत तत्व 24 उसके अंदर सारे मिला के तत्व है, उसको महत तत्व है। उसके लिए 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं महद ब्रह्म गर्भ अहम गर्भ ददामी, ये महद ब्रह्म है इसमें मैं गर्भ धारण करता हूं, मतलब जीवों को उसमें मैं स्थापित करता हूं। तो वो सृष्टि महत तत्व के ऊपर भगवान केवल नजर डालता है, भगवान नजर डालता है तो उसमें हलचल होती है। जो तीन गुण बिल्कुल सामान्य होते हैं वो ऊपर होते हैं और उसके अंदर भगवान की दृष्टि से काल प्रवेश करता है जो भगवान का स्वरूप है, और फिर यह सृष्टि अपने आप होने शुरू हो जाती। तो महत तत्व जो है उससे सृष्टि होती है। तो वो कैसे होता है, बोले भगवान की नजर पड़ती है। भगवान प्रकृति को हाथ नहीं लगाते, प्रकृति को हाथ नहीं लगाते भगवान, केवल नजर पड़ती है। तो अध्यक्षण का मतलब जिसकी नजर, भगवान की केवल नजर पड़ती है। भगवान के चरणों में, भगवान विष्णु के चरणों में लक्ष्मी बैठी है, लेकिन लक्ष्मी की जरूरत नहीं है भगवान को सृष्टि पैदा करने के लिए, बस ऐसे सृष्टि के ऊपर नजर डाली और सृष्टि पैदा हुई। भगवान जब सृष्टि करनी होती है तो स्वयं प्रकृति को नहीं छूते हैं, लेकिन प्रकृति के साथ भगवान को छूना होता है तब भगवान विष्णु अपने आप को परिवर्तित करके शंकर बना देते हैं, शिव सदा शिव। और जो प्रकृति के साथ उसका संबंध है, तो शिव शिव और प्रकृति और पार्वती जो प्रकृति है, तो ये दो ये सारी सृष्टि करते हैं। इसलिए जो सृष्टि करने वाले हैं वो है शंकर और पार्वती, लेकिन भगवान क्या करते हैं, केवल देखते हैं, दृष्टि डालते हैं बस। तो ये सारा काम मेरी अध्यक्षता में हो रहा है, मयाध्यक्षेण प्रकृति, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है। सूयते सचराचम, सूय कहते हैं जन्म देने को, सूय कहते हैं जिसे बच्चे का जन्म होते हैं ना, तो उसको कहते हैं सूयते। चराचरम माने इस जगत के अंदर चर और अचर, चलने वाले और न चलने वाले, ये जो भी पैदा हुआ है ये प्रकृति पैदा करती है, लेकिन मेरी अध्यक्षता में करती। हेतु ना अन्य, और कोई इसका हेतु नहीं है, प्रकृति हेतु है, मैं नहीं, प्रकृति हेतु है। लेकिन बात यह कि प्रकृति मेरी शक्ति है, इसलिए शक्ति और शक्तिमान में भी कोई अंतर नहीं है। ये मेरी शक्ति है, ये मेरी अध्यक्षता में काम करती है, ये जो कुछ आपको दिखता है इसने पैदा किया है। हेतु नाने नाने कौनते, अन्य कोई हेतु नहीं है कौनते, जगत इस जगत का विपरिवर्तते, ये जो भी कार्य जगत में हो रहा है, जो भी कार्य जगत में हो रहा है ये सारा प्रकृति कर रही है, और हमसे भी जो कराइए करा रही है प्रकृति करा रही है। ये तीसरे अध्याय में श्लोक है, प्रकृति क्रियामाण ही गुण ही करवाणी सर्वस, मूढ़ करता हम इति मन्यते, हम समझते हैं मैं करता हूं लेकिन काम सारा प्रकृति कराती। प्रकृति कैसे कराती है, प्रकृति का यहां अर्थ क्या है, स्वभाव। काम कौन कराता है, हमारा स्वभाव कराता है। स्वभाव हमारा कैसे बनता है, प्रकृति के तीन गुणों से बनते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, हमारा स्वभाव बनाता है और सारे कर्म स्वभाव से होते हैं। एक चोर साधु बन गया, बड़ा प्रचार किया उसको, साधु बन गया, रात को साधुओं के साथ हरिद्वार जा रहा था, रात को चोर को नींद आए नहीं, चोरी करने के बगैर उसके हाथ में कुर्जली, वो करे क्या। तो एक साधु की धोती निकाली, दूसरे के थैले में डाली, एक का लोटा उठा के दूसरे में डाला। सुबह साधु चिल्ला रहा है, मेरी धोती कहां है, मेरा लोटा कहां है। ये कहता है भाई तेरी धोती उधर पड़ी है, तेरा लोटा उधर पड़ा है। बोला ये क्या, किसने किया। बोला मैंने किया। बोला क्यों किया। बोला चोर चोरे चोर हूं, साधु बन गया हूं, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, अब क्या कर सकता हूं, मेरी आदत है, रात को नींद नहीं आती है। एक सोनारा साधु हो गया, एक बड़ा गोल्ड सिमत था साधु हो गया, और बाबा जी हो गया तो बोला रोटी ले आओ, तो किसी घर में रोटी जाए तो ऐसे तेल हो गया, ये तो 18, ये 20 ग्राम से ज्यादा तो नहीं लग रही है। और फिर उसको नजदीक से देखे, इसमें मिक्स है आटा, फिर ये तो 18 क्रेट भी नहीं। उसके दिमाग में तो वही चल रहा है ना जो पुराना है। साधु बन, इसलिए कई साधु बनते हैं ना तो भी उनके जो पुराना नेचर है वो अपनी जगह पे वहीं खड़ा रहता है। तो ये नेचर प्रकृति से बनता है, ये हमसे जबरदस्ती कार्य कराता है, हम नहीं चाहते हैं तो भी ये नेचर हमारा कराता है। तो नेचर अपना बदलना, ये असल में सारे साधन का अर्थ है कि नेचर को कैसे हम बदलें, स्वभाव को बदलना है। और ये बदलता है संग से। जैसे हमारे अंदर जो है ना, हमारे अंदर प्रेम भी है, करुणा भी है, दया भी है, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, सब है। अब अगर हम ऐसा संग करेंगे जो कामी क्रोधी लोभी है तो काम क्रोध लोभ अंदर से बाहर निकलेगा, और अगर संग करेंगे उनका जो प्रेमी है तो प्रेम बाहर निकलेगा। तो अब हमारे को करना यह कि संग किसका करना है, सारा शिक्षा इसके ऊपर आगे खड़ी होती है, संग किसका करोगे, जिसका संग करोगे ऐसी चीज बाहर आएगी। कोई चीज बाहर से अंदर नहीं आती। एक महात्मा ने कहा कि आपको ऑरेंज देते हैं, उसको दबाओ, निकलाओ, निकले दबाने से क्या निकलेगा, ऑरेंज से ऑरेंज का जूस निकलेगा, आम का तो नहीं निकलेगा। तो अगर हमारे को कहीं तकलीफ आती है, दुख आती है, अगर हम झगड़ा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो कहां से निकलता है, हमारे अंदर होता है वही निकलता है ना, कहीं बाहर से तो नहीं आता है, हमारे अंदर ही है वो निकलता है। जैसे जैसे चपका का नारंगी को दबाएंगे तो नारंगी का जूस, नहीं हमारे को कोई दबाएगा तो हमारे अंदर जो माल है वही निकलेगा। तो क्रोध निकलता है, हमारे अंदर ही पड़ा है वही निकलेगा, बाहर कहीं से नहीं आता है। इसलिए हमारे को अपने अंदर की परिवर्तन करना है, बाहर का नहीं अंदर का। तो ये जो श्लोक है, भगवान कहते हैं ये सृष्टि मेरी अध्यक्षता में काम, स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र तो कोई नहीं है, सभी भगवान के ही निर्देश में काम करते हैं, लेकिन भगवान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इस सृष्टि के कारण में, कार्य में भगवान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। लेकिन भक्तों के साथ व्यवहार करने में भगवान डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब आपको एक उदाहरण दे के कथा को विराम देते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। कब तक चलती है भैया ये? और तो अभी तो टाइम है अपने पास, हाँ कुछ प्रश्न उत्तर होंगे तो उसको भी श्रवण करेंगे। तो उदाहरण ये दे रहा था, हम जो कर्म करते हैं उसका फल देने का भगवान ने नियुक्त किसको किया है, धर्मराज को। सबका फल वो देता है कर्मों का, और हर एक के कंधे के ऊपर उन्होंने एक अपना एजेंट बिठा दिया, उसका क्या नाम है, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन क्या है, सीक्रेट फोटोग्राफर। जो हम काम करते हैं वो सारी उसकी रील कैमरा चलती है, जैसे आपके यहाँ रोड की कैमरा लगी है ना, आपको रोड की कैमरा में फोटो आ गया तो आपके घर में बिल आ जाएगा, दंड भरना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते मैं यहां से गया नहीं था, कैमरा में आ गए तो आ गए। तो यमराज का जो बैठा है वो सबके कंधे में बैठा है और कैमरा उसकी फिट लगी है, जो कुछ हम करते हैं सब उसमें भरा जाता है। तो वो सब हिसाब किताब तो ऐसे डिपार्टमेंट भगवान ने सारे देवताओं को दिए हैं ये संसार को चलाने का। जैसे हम जानते हैं कि तीन गुणों के अवतार भगवान ने सृष्टि के लिए कौन से किए, ब्रह्मा जी को रजोगुण का अधिपति बनाया, सृष्टि करो, सृष्टि करने के लिए रजोगुण की आवश्यकता पड़ती है, और पालन करने के लिए भगवान विष्णु वो सतोगुण को ग्रहण करके पालन करते हैं सबका समान भाव से, और भगवान शंकर को प्रलय के समय में, प्रलय तमोगुणी कार्य है, भगवान शंकर तमोगुणी नहीं है लेकिन कार्य तमोगुण का है प्रलय का। तो ये तीनों भगवान के गुण अवतार कहलाते हैं। ऐसे भगवान के अवतारों की बहुत सा विस्तार है, लेकिन ये जो राम कृष्ण ये अवतार, इनको लीला अवतार कहते हैं, ये पूर्ण अवतार लीला अवतार है। इनके अंदर शिक्षाएं हैं, इनके अपने जीवन के अनुकरण से सिखाया है, कुछ शिक्षाओं से सिखाया है। तो ये अवतार की दूसरी श्रेणी है। मैं कथा जो बात बताने जा रहा था वो ये बताने जा रहा था, भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के बाद भी ऐसा नहीं है भक्त बनने के बाद हमसे गलतियां नहीं होंगी, गलतियां तो फिर भी होंगी क्योंकि हमारा स्वभाव हमसे गलतियां कराएगा। ऐसा नहीं है कि मैं भक्त बन गया तो मुझसे गलती नहीं होगी, पर फर्क कितना पड़ जाएगा, फर्क इतना पड़ेगा। अगर आपके दुकान में, घर में अचानक से कोई आदमी चोरी करके कोई कुछ उठा के जाए तो आप एकदम पुलिस को फोन करते हो, और उसको कौन दंड देता है, पुलिस देता है, और आप पुलिस के हवाले उसको करते हो। ऐसे जो सामान्य व्यक्ति अपने आधार के ऊपर जो काम करता है तो यमराज के पास उसको जाना पड़ता है। अब अभी आपका अपना बेटा आपके दुकान के ऊपर वो 50 दीनार लेके चला गया, आपने देखा बेटे नहीं उठाया है मेरे, या घर से उठा दे बच्चे उठा दे, ऐसे नहीं, आप सब बड़े हो गए, आप अपने जीवन में देखो कितनी बार ऐसे छोटी मोटे कभी कहीं से कुछ फल उठाया, कभी रुपया उठाया, ये सबने किया होगा, किसी के खेत में से फल तोड़ के आया, ये सबके जीवन में कहीं ना कहीं होता है बचपन में। तो अगर बच्चा आपका 50 दीनार 100 दीनार ले जाए तो पुलिस को फोन करोगे क्या? आप ही कान पकड़ के उसको डांट कर दो। बस फर्क इतना है, जो एक बार भगवान का हो जाता है भगवान ही उसका कान पकड़ करते हैं, यमराज के पास नहीं भेजते, इतना अंतर हो जाता है। कान पकड़ करते हैं लेकिन फिर यमराज का नहीं, पुलिस के पास नहीं, क्यों? अपना हो गया ना। तो जो भगवान को अपना मान लेता है, ये एक शब्द कहना सीख जाए भगवान हम तेरे हैं, ये राम जी कहते शक्कर दे वो परपना, कोई एक बार कहे कि भगवान मेरा, भगवान तो सीना ठोक के कहते आप सब मेरे हो, लेकिन हम नहीं कहते हैं कि भगवान हम आपके, भगवान तो कहते हैं आप सब मेरे हो, ममई वंश कहते हैं, अहम बीज प्रदा पिता कहते हैं, मैं पालन पोषण करने वाला हूं कहते हैं, मैंने वेद दिया सब कह रहे हैं, लेकिन हम नहीं कहते हैं कि भगवान हम तुम्हारे, हम कहते हैं भगवान हम दुनिया के। अरे भगवान कहते दुनिया ही मेरी है, दुनिया ही मेरी है, ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो असल में हमको भगवान का कैसे बनना जाए, एक संत था किसी के, बड़े किसी धर्मात्मा धनी सेठ के बंगले में संत आए, संत ने कहा बहुत बड़ा आपका तो विला, बड़ा अच्छा महल बनाया है। बोला महाराज हम कुछ नहीं लाए थे, भगवान की कृपा है, आप संतों की दया है, हमारा नहीं है, भगवान का दिया हुआ है। अच्छा, अंदर बड़ा सुंदर फर्नीचर फिक्स्चर, बड़ा अच्छा इंटीरियर डेकोरेशन, बड़ा सुंदर बनाया हुआ है, नहीं भगवान हमारा नहीं, महाराज ये तो गोविंद की कृपा है, गोपाल का है, उसने दिया है, परिवार अच्छा, पत्नी देखी सेवा कर रही है, बच्चे आज्ञाकारी हाथ जोड़ के खड़े हैं। अरे भाई भगवान आपको परवाह, बेटा आपका परिवार बड़ा अच्छा है, भगवान का दिया हुआ है, हम तो उनकी देखभाल कर रहे हैं, है भगवान का। अंदर देखा बहुत सुंदर गोपाल जी का मंदिर था, अंदर भगवान का मंदिर था। बोला आपका ये मंदिर अच्छा है? बोला हाँ ये गोपाल मेरा है, घर मेरा नहीं है, फर्नीचर फिक्स्चर परिवार ये तो मैं देखभाल कर रहा हूं भगवान का, लेकिन ये मेरा। ये ग्रस्त की भावना आ जाए मेरा भगवान है, बाकी सब कुछ भगवान का है, तो समझ लो कि हमने सारे सिद्धांत समझ लिए। बाकी है भी सब कुछ भगवान का, हमारा कुछ है भी नहीं, कुछ लाए भी नहीं, कुछ ले भी नहीं जाएंगे, सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी पकड़ के बैठे कि नहीं मेरा है। ये जो मान्यता है ये हमारे बंधन का कारण है, इसी को आसक्ति कहते। तो इसलिए एक बस एक मन में भाव बनाओ कि जो भगवान मेरा है बाकी सब कुछ भगवान का है। आ मेरे को जो दिया है वो मैं उसका क्या केयर टेकर हूं, अंग्रेजी में कहते हैं मैं उसका केयर टेकर हूं। एक उदाहरण देते हैं, जैसे बैंक का कैशियर होता है, अपने हाथों से रोज के लाखों का लेन देन करता है लेकिन उसका अपना कुछ नहीं है, वो समझता है ये मेरा नहीं है, मेरा उतना ही है जितना मुझे तनख्वाह मिलती है। ऐसे इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी हमको मिलता है आता है जाता है, अरे भाई तो देने वाले किसी और का है, हमारा तो भगवान है, बाकी सब भगवान का है। ये एक सिद्धांत समझ में आ जाए, भगवान में आसक्ति हो जाए, भगवान को अपना मानने की ममता हो जाए। असल में सारा साधनों का एक सार है कि भगवान से हमारे जो रिश्ते हैं उनको हमने भुला दिया, इसलिए दुनिया में भटक रहे हैं, और भगवान से वो रिश्ता पुनः जागृत हो जाए तो हमारे सब दुख दूर हो जाए। और भगवान के स्थाई भाव में 5 रिश्ते माने गए हैं। शांत भाव में भगवान बड़े हैं, हम उसके उसको दूर से नमस्कार करते हैं, लेकिन जो वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने 4 ही संबंधों को मुख्य संबंध माने हैं। एक संबंध जो सबको सदा मानना चाहिए वो है भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उसके सेवक हैं, ये तो सबका निर्धारित संबंध है, भगवान हमारे स्वामी हैं, हमारे हैं, बस इतना कह दो मेरा स्वामी है। सबका है तो ठीक है लेकिन मेरा है, सबका अपनी जगह पे मेरा है। ये संबंध जैसे पक्का होता जाए, इसलिए आप अगर हमारे बड़े बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन आप देखेंगे तो बच्चों के नाम क्या रखे थे, गोवर्धन दास, गोपाल दास, गोविंद दास, रामदास, पीछे दास लगा देते सबके पीछे कि ये भगवान के दास हैं। हमारे नाम प्राकृतिक ऐसे दास नाम लगा हुआ है, आप देख लो, इसका मतलब भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उसके सेवक हैं। ये सीधा सा एक संबंध है, ये संबंध हमारी समझ में आ जाए। और दूसरा संबंध, ये जब गहरा संबंध होता है तो हम कहते हैं भाई कौन है भगवान, मानो के हम यहां आते हैं, हमारे लिए तो गोवर्धनधारी नाथ जी यहां भगवान है, विराजमान ठाकुर जी हमारे हैं। ठाकुर उसको कहते हैं जो राजा हो, राजा को वैसे ठाकुर कहते हैं, जिसके निर्देश में सब काम चलते हैं, तो जिस जो राजा है वो यहां का राजा है, ठाकुर है। अब मानो आपको कहीं अर्जुन मिल जाए, आप उससे पूछो कि कौन है कृष्ण, तो क्या कहेगा? कहेगा भगवान है, ये कहेगा क्या? क्या कहेगा? मेरा दोस्त है, यही कहेगा, मेरा मित्र है ना, तो उसकी ममता क्या है कि मेरा मित्र है। और यशोदा मैया कहीं मिल जाए और आप पूछो कि कृष्ण कौन है, तो क्या कहेगी? ये तो मेरा लाला है, ये तो मेरा लाला है, ये नहीं भगवान है, ये नहीं कहेगी। ऐसे जब हमारी मान्यता भगवान की ओर हो जाए कि मेरा है, तो समझो कि हमारा जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया। ये हमारा संबंध भगवान के साथ। एक श्लोक कविराज गोस्वामी ने लिखा है, कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कभू नाही। सबके हृदय में भगवान ने अपना प्रेम तैयार, कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध। सिद्ध शब्द का अर्थ क्या है? अभी तो आजकल घरों में वो सिस्टम नहीं रह गया जब से प्रेशर कुकर आया। पहले जब चावल पकाने के लिए रखते ना, तो एक दाना चावल निकाल के ऐसे दिखते थे, भाई चावल सिद्ध हो गया बोलते थे। सिद्ध हो गया का मतलब पक गया पूरा। अब ये तैयार है, सिद्ध का मतलब तैयार। सो कृष्ण प्रेम सबके हृदय में तैयार पड़ा है, कहीं से लाना नहीं है, सबके अंदर पड़ा है, कोई हृदय खाली नहीं है। सबके गठड़ी लाल, सबके हृदय में ये भगवत प्रेम का रतन पड़ा है। उसको खोजत दानत नहीं, उसको खोज नहीं सकता है, ताते भया कंगाल, इसलिए संसार में कंबाल कंगाल होके घूम रहा है। अरे अंदर पड़ा है भगवत प्रेम, कहीं बाहर नहीं है। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कभू नाही, तो फिर कैसे प्रकट होगा? शरवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय। जब भगवान की कथा सुनेंगे, शरवण आदि का मतलब कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान का सेवा करेंगे, तो ये प्रेम अपने आप जागृत हो जाएगा। जैसे आप भागवत कथा बार बार सुनेंगे, तो किसी को बाल लीलाएं बहुत अच्छी लगती हैं, इसका मतलब आपका कृष्ण के प्रति बाल भाव है। किसको कृष्ण की गौचारण लीला अच्छी लगती है, बांसुरी बजाना अच्छी लगता है, क्योंकि गीता में बड़ी रुचि होती है, ये सखा प्रेम की परिभाषा हो गई। कोई तो भगवान की रास मधुर लीला की वर्णन करने में सुख लेते हैं। अब सबकी बात नहीं करते हैं, लेकिन हर एक उसका अपना अंदर से भाव अपने आप जागृत होता है। तो ये श्रवण का मतलब, कथा श्रवण करने से हमारा भगवान के साथ जो संबंध है वो अपने आप उदय का मतलब वो जागृत होता है। ऐसा नहीं कहीं से लाना है, पड़ा अंदर है। ये तो हम अपने मंदिर में उदाहरण दिया था भक्तों को, बहुत सरल सा उदाहरण है। प्रेम तो अंदर सबके पड़ा है, बाहर क्यों नहीं निकल रहा है भाई? जैसे रात को आप कहो सूर्य उग जाए तो नहीं उग सकता ना, सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा ना। जैसे सूर्य सुबह अपने आप उदय होता है, ऐसे प्रेम अपने आप उदय होगा, लेकिन उसके लिए साधन क्या करना पड़ेगा? जैसे रात का इंतजार करना पड़ेगा। अगर रात का इंतजार नहीं करते हो तो जहाज में चढ़ो, अभी अमेरिका पहुंचे तो सूर्य उगता हुआ नजर आ जाएगा। तो या तो प्रयास करके वहां जाके देखो, ये साधन करो, नहीं तो सुबह तक का इंतजार करो, सूर्य उगेगा जरूर। तो ऐसे प्रेम हमारे अंदर पड़ा है, इसको कैसे जागृत किया जाए? तो एक उदाहरण है, हमारे भक्तों ने सुना है, आपको सुना रहे हैं। गांव में पानी निकालने के लिए हैंडपंप होता है। मई जून जुलाई में बहुत गर्मियां होती हैं, जब तो नल को चलाते हैं ना तो पानी नहीं आता है, क्योंकि बीच में वैक्यूम हो जाता है, बीच में खाली वैक्यूम होता है, वाइसर के बीच में पानी की लेवल में पानी नीचे होता है, पानी आता नहीं, हवा आती। तो लोग, समझदार लोग क्या करते हैं गांव में, पानी के वहां ऊपर से बाल्टी लेके और दो एक जग पानी डालेंगे, जैसे हम ऊपर से पानी डालेंगे फिर नल का चलाओ तो पानी आ जाएगा। ऐसे प्रेम अंदर हमारा तैयार पड़ा है, बीच में माया ने इतना सारा खाली जगह बना दिया। अब कान के द्वारा दो चार दिन कथा सुनो, ऐसे बाल्टियां भर के कान से डालते जाओ तो ये प्रेम अपने आप बाहर निकल के आ जाए। ये जो कीर्त, ये कथा है, ये असल में इसलिए शब्द बोला है इसको, श्रवण कीर्तन आदि जले सिंचन करे। ये जो भगवत प्रेम को जागृत करना है, जैसे कोई बीज डालते हैं तो उसमें से फल चाहिए तो उसमें पानी देना पड़ेगा ना, तो ये श्रवण जो है भगवान की कथा है ना, ये सिंचन है, ये जल देना है और इससे एकदम वो प्रेम प्रकट होके बाहर आ जाएगा। तो उस प्रेम को जागृत करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। असल में प्रेम ही एक धर्म है, प्रेम ही धर्म है और ये सबके हृदय में पड़ा है और वो भगवान ने रखा है और भगवान के लिए है। बस उस तरफ ये उन्मुख हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। और जो भगवान से प्रेम करेगा वो सारे संसार के जीवों से प्रेम करेगा, मानव से नहीं, जीवों से प्रेम करेगा। वो तो चींटी का भी ध्यान करेगा, पेड़ को भी नहीं काटेगा, उसको भी ध्यान करेगा। तो भगवत प्रेम होने से, जैसे जड़ में जल देने से पूरा पेड़ हरा भरा होता है, पेट में भोजन ढालने से सारे शरीर को शक्ति मिलती है, ऐसे भगवान की प्रेम से सेवा करने से भगवान की संतुष्टि होती है तो जगत संतुष्ट हो जाता है। भगवान संतुष्ट, जगत संतुष्ट, ये सबको उदाहरण सबने सुना है। दुर्वासा जी आए दुर्योधन के पास हस्तिनापुर में, भोजन कराओ। दुर्योधन जैसा राज धरती के ऊपर आज तक किसी का नहीं हुआ है। भीष्म पितामह जैसा जिसके पास सेनापति हो, जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान हो, उसके बराबर कोई और राज हो सकता है? गुरु द्रोणाचार्य जैसा जिसके पास शिक्षा देने वाला गुरु हो, कृपा आचार्य, वो अभी तक भी वो तीसरी पीढ़ी तक कृपा थे, ऐसे जिसके पास बड़े महान महात्मा, वो कोई कम राज उसका नहीं था। बस उसकी कमी क्या थी, भगवान से द्वेष था, बाकी सब चीजों की कोई कमी नहीं थी, केवल भगवान से द्वेष था। ये दुर्योधन में कमी थी। सो दुर्योधन के पास जैसे दुर्वासा आया तो बड़ा प्रेम से उसको 56 भोग खिलाए, बड़ा खुश हो गया, आशीर्वाद दिया, बोला तुम तो युवराज आनंद से रहो। अब उसके मन में आया कि मेरे को तो आशीर्वाद मिल गया लेकिन पांडवों को श्राप दिला दूं तो वन में गए हुए मेरी जान छूट जाएगी, ये अच्छा ऋषि है श्राप देने में, इससे और कोई है नहीं। बोला महाराज आपने बड़ी कृपा की, हमारे पास आए, हमारे भाई काम्य वन में आज ऊपर दर्शन करने जो गए हैं, सांझी बनी हुई है, काम्य वन बना हुआ है, 12 वन है वृंदावन में, जमुना जी के तट पे, एक तट पे 5, दूसरे पे 7, 12 वन है, द्वादश कानन, उनमें से एक काम्य वन है, तो काम्य वन वृंदावन का एक वन है। उस वक्त पांडव काम्य वन में रह रहे थे और वो 12 साल वनवास के लिए थे। पर महाराज आप कृपा करके हमारे भाइयों को भी आतिथ्य का सौभाग्य प्राप्त कराइए, उनको भी आशीर्वाद दीजिए, लेकिन आप कृपा करके दोपहर के बाद जाना, क्योंकि सुबह वो भगवान की सेवा में लगे होते हैं। अब ये क्यों कहा? बोला दोपहर को द्रौपदी भोजन खा लेती है तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं होगा, और कुछ खिलाएंगे नहीं, अपने आप शराब दे देगा। उसने तो बड़ी चालाकी करके भेजा। अब दुर्वासा जी भी चले गए वहां, और कब गए? जब सबने भोजन कर लिया, द्रौपदी के पास एक पात्र था, उसका नाम था अक्षय पात्र, वो सूर्य ने दिया था, और उसमें जब तक स्वयं द्रौपदी नहीं खाती थी तब तक तो सबको खिला सकती थी, स्वयं ने खा लिया तो फिर दूसरे दिन उसने द्रौपदी ने भोजन कर लिया। फिर दुर्वासा से 10,000 शिष्य लेके आ गए, कहा महाराज युधिष्ठिर हम भोजन करेंगे। महाराज ने कहा आइए, स्वागत है आपका, अब राजा ना तो किसी को नहीं करता है, मैं जाता हूं जमुना स्नान करके आता हूं, तब तक तैयारी करो। ए द्रौपदी प्रिय, भोजन का प्रबंध करना है। बोला आज तो नहीं हो सकता, मैंने भोजन कर लिया। ये तो ऋषि आएगा अभी और नहीं खिलाया तो ये तो बड़ा क्रोध करेगा। द्रौपदी हे कृष्ण अब क्या करूं कन्हैया, तो धूप भागता हुआ कृष्ण आ गया। राते कहता द्रौपदी बहुत भूख लगी है। अरे अरे तू भी भूखा आया, पहले 10,000 वहां बैठे हैं, अब उनका व्यवस्था है नहीं और तुम्हारे ही भूखे का क्या करें। बोला बहुत भूख लगी है द्रौपदी। बोला आज मैं कुछ खा लिया, अब इस बर्तन में कुछ है नहीं, कहां से कल मिलेगा। बोला तेरा बर्तन इधर लाओ, देखो कुछ पड़ा होगा। अब भगवान तो सब जानते हैं क्या किया, का एक भाई चावल का दाना पड़ा था कि एक जो कोई छिलका पड़ा था वो लेके खाया। बोला मैं तुष्ट, जगत तुष्ट, और पेट भर गया मेरा जगत। और वो जो स्नान कर रहे थे 10,000 शिष्य, उनका पेट भर गया। बोला गुरुजी, गुरुजी अब खा नहीं सकते, महाराज ने भोजन तैयार किया होगा, बड़ा अपमान होगा, अब क्या करें। अब दुर्वासा कहता है एक 10,000 प्लेटों का ऑर्डर दे के आए, कैंसिल कैसे करेंगे ये तो बड़ा काम है, इतना सारा भोजन का कह के आए, अब बोला खा नहीं सकेंगे गुरुजी, बड़ा अपमान हो जाएगा। बोला बेटा फिर भागो, अब भागो यहां से, मैं खड़ा हूं, तुम भागो यहां से। मेरे को मालूम है, एक बार मैंने अम्बरीश के साथ ऐसे छेड़छाड़ की थी, मेरे को जगह ही नहीं मिली थी, तो भक्तों से मैं कुछ करूंगा नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण का भीमसेन, तुम जाओ महाराज को कहो के भोजन तैयार है। तुम्हारा युधिष्ठिर कहां है? बोला आप जाओ तो सही, बुलाने जाओ, व्यवस्था हो जाएगी। अब भीमसेन उठाया गदा, चला महाराज, महाराज दूर से ही, महाराज के भाग गए शिष्य, महाराज खड़े हैं। बोला महाराज भोजन तैयार है। बोला पांडु पुत्र बड़ी प्रसन्नता आपके घर में, कभी आएंगे खाने? आज शिशुओं का और हमारा सबका संतुष्टि से पेट भर गया, वैसे भी भोजन कराते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, मैं दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद देता हूं। अब भोजन नहीं कर पाएंगे, आशीर्वाद आपको देते हैं, आपका वनवास सुख से गुजरेगा और आपका वापस राजपाट मिलेगा। बोला महाराज इतने ही प्रसन्न हो तो एक और आशीर्वाद दे दो। अब तो भीम को आया मन में, बोला क्या आशीर्वाद चाहिए आपको बेटा? बोला महाराज मैं बहुत खाता हूं, मेरा नाम भीम है, मैं बहुत खाता हूं, और जब मैं बहुत खाता हूं तो बहुत बार मेरे को जाना पड़ता है शौचालय में। बोला ये तो ठीक है, पर क्या चाहिए आशीर्वाद? बोला महाराज एक काम करो, खाऊं मैं और ये हमारे को दुख शकुनी देता है, शौचालय में शकुनी जाए पेट में भोजन मैं करूं और बाथरूम में शकुनी हो। महाराज ने बोला तथास्तु, जाओ भोजन मुझे नहीं करना है। ये जो लौट के वापस आया, बोला महाराज का आज तो पेट भर गया, भगवान तो मुस्कुरा रहे थे कि भगवान संतुष्ट हो, जगत संतुष्ट हो गया, ऋषि चला गया। अब भीमसेन कहता है भगवान श्री कृष्ण हम तो वन में है, शहर में जा नहीं सकते, आप 1 किलो लाल मिर्ची ला के दो। बोले क्या करेगा लाल मिर्ची को? बोला आज घोट के पीनी है। बोला वो क्यों? बोला मेरे को आशीर्वाद मिला है, देखूं शकुनी का क्या हाल होता है। और ये शकुनी पहला आतंकवादी अफगानिस्तान से गया था, ये पहला अफगानिस्तान का आतंकवादी भारत में आया था, और ये सारा उसने ही कराया था कुरुक्षेत्र का युद्ध। ये पहला कंधार से गया हुआ गंधारी का भाई है। सो भगवान संतुष्ट हो तो जगत संतुष्ट हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे ख्याल में समय पूर्णाहुति पे पहुंचा है। श्री कृष्ण भगवान की, भगवद वाणी श्रीमद भगवद गीता की, गाय पो गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और यहाँ मंदिर संचालन और यहाँ गीता के 70 के दशक से चल